अमन ने अपनी कंपनी का सारा काम अमित के हवाले करके उसे विदेश यात्रा का बताकर अपने गांव जाने की तैयारी कर ली थी। अमन ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और अपनी माँ से विदा लेकर अपने पुश्तैनी गांव चला गया, जहां उनकी बरसों पुरानी हवेली थी जो तकरीबन 100 साल पुरानी थी, लेकिन आज भी वो ऐसी लगती थी मानो अभी हाल ही में उसे बनवाया गया हो। अमन ने देखा हवेली के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि वहां का चौकीदार अपने घर चला गया होगा। अमन को उसके घर का पता मालूम था, इसलिए अमन उस चौकीदार के घर की ओर चल दिया। अमन के चौकीदार का नाम रामलाल था। रामलाल का परिवार बरसों से उस हवेली की चौकीदारी कर रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर चुकी थी उन लोगों को उस हवेली की रखवाली करते हुए। अमन रामलाल के घर की ओर चल दिया। उसने देखा उसके दरवाजे का भी ताला लगा हुआ था। अमन को कुछ शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही अमन वापस जाने के लिए पलटा, उसे रामलाल के घर की खिड़की खुली हुई दिखाई दी। अमन ने कुछ सोचा और उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही अमन ने अंदर झांका, उसने देखा रामलाल का सारा परिवार वहां छिपे हुए बैठा था। अमन को काफी अचरज हुआ और वो रामलाल के मुख्य द्वार पर आया और उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तब उसने जोर से एक लात दरवाजे पर मारी और एक पल में दरवाजा टूटकर अलग हो गया। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर रामलाल का पूरा परिवार चिल्लाने लगा, लेकिन दरवाजे पर अमन को देखकर रामलाल दौड़कर उसके पास आया और अमन के पैरों में गिर पड़ा। अमन ने उसे उठाया और एक तरफ बैठाते हुए बोला, हवेली पर ताला लगाकर अपने आप को इस तरह से घर में बंद करने का क्या कारण है? क्यों किया आपने ये सब? इतना सुनते ही रामलाल फफक फफक कर रो पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो साहब, मैंने हवेली की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया। क्या हुआ है, खुलकर बताओ और डरो नहीं। अमन समझ चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ बात थी जिसके लिए उसका बरसों पुराना मुलाजिम यहाँ छिपकर बैठा है। तब रामलाल ने कहा, वो अमन साहब, वो हर रात को 7 बजे के बाद से ही हवेली से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, और फिर एक रात मैं हिम्मत करके जैसे ही मैं हवेली में गया तो किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया और एक आवाज वहां गूंजने लगी कि चले जाओ यहां से, अगर तुम फिर कभी यहां नजर आए तो मैं तुम्हारे परिवार के समेत तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। और साहब, फिर जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर अपने घर तक पहुंचा था और मैंने अपने आप को परिवार समेत बंद कर लिया ताकि उस चुड़ैल को ये लगे कि मैं यहां से चला गया हूं। ऐसा कहकर वो रोने लगा था। तुम ये कहना चाहते हो कि हवेली में कोई चुड़ैल है? अमन ने पूछा। हाँ साहब, हवेली में पक्का कोई चुड़ैल है। मुझे माफ कर दो साहब, मैं अब उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगा। अमन रामलाल की बात सुनकर थोड़ा सोचने लगा। उसने सोचा, जरूर या तो ये कुछ नशा करके वहां गया होगा, वरना अमन सिंह राठौड़ की हवेली में इंसान तो क्या, भूतों को भी आने के लिए मना है जब तक अमन सिंह राठौड़ खुद ना चाहें। अमन ने रामलाल से कहा, तुम एक काम करो, हवेली की चाबी दे दो मुझे, अगले 7 दिन मैं हवेली में ही रहूंगा। अमन की बात सुनकर रामलाल कांपने लगा था और वो बोला, साहब आप हवेली में मत जाइए, मेरी बात मान लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है, वो आपको मार डालेगी। अमन, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम मुझे चाबी लाकर दो। रामलाल को अमन की बात माननी पड़ी और हवेली की बड़ी सी चाबी लाकर उसने अमन को थमा दी थी। चाबी लेकर अमन ने रामलाल को कुछ पैसे दिए और बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अमन सिंह राठौर तुम्हारे पूरे परिवार का खर्च जिंदगी भर उठाएगा, चाहे तुम काम करो या ना करो। अमन की बात सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, वरना उसे यही टेंशन खाई जा रही थी कि अब वो अपने परिवार को कैसे पालेगा। लेकिन अमन ने तो जैसे उसकी सारी परेशानी खत्म कर दी थी। अमन रामलाल से चाबी लेकर हवेली की ओर चल दिया था। उसने रामलाल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सोच जरूर रहा था उसके बारे में। उसे तो बस जिन्नों की दावत की तैयारी करनी थी, उसके बाद उसे बस अपनी तारा से मिलना था। अमन ने हवेली का ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने देखा उसकी हवेली आज भी वैसी ही थी जैसी उसने बचपन में देखी थी। अमन काफी सालों के बाद वहां आया था। अमन ने देखा हवेली की एक एक चीज बड़े ही करीने से सजाई हुई थी, कहीं पर भी धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं था। अमन पहले जाकर बड़े से सोफे पर किसी राजा महाराजाओं की तरह बैठ गया और सोचने लगा कि हवेली में जिन्नों की दावत में क्या क्या सामान होना चाहिए। अगर ये दावत एक बार अच्छे से पूरी हो जाती है तो अमन की काफी सारी मुश्किलें आसानी से खत्म हो सकती थी। अमन अपना समय बर्बाद ना करके हवेली के तहखाने की ओर चलने लगा। यही वो जगह थी जहां सभी जिन्नों की दावत होनी थी। बरसों से ये हवेली सभी जिन्नों का ठिकाना रही है, इसलिए ये आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई थी। जैसे ही अमन ने तहखाने में अपना पहला कदम रखा, तुरंत तहखाने की लाइट चली गई। अमन थोड़ा सा चौंका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया और जब वो तहखाने में एकदम बीचों बीच पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। अमन ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था, वहां कोई नहीं था। लेकिन अमन को बड़ी ही मजबूत अनुभूति हो चुकी थी कि जरूर यहां कोई ना कोई है। है, या तो कोई जिन या आत्मा। लेकिन अमन ने, वो जो कोई भी था, उसे ये जाहिर नहीं होने दिया था कि उसे पता है कि यहाँ कोई शक्ति मौजूद है। अमन आराम से तहखाने में बैठ गया और अपना फोन निकालकर चेक करने लगा। वो जो कोई भी साया था उसके सामने आने का इंतजार करने लगा था, और अभी कुछ ही देर हुई थी कि अमन के पास वाली कुर्सी अपने आप खिसक कर नीचे गिर गई। अमन ने कोई रिएक्शन नहीं किया, वो ऐसे ही लापरवाही से बैठा रहा। अमन को कुछ रिएक्ट ना करता देख शायद वो साया गुस्से में हो गया और उसने अमन के ठीक सामने रखा हुआ बर्तन अमन की तरफ फेंका, जिसे अमन ने अपने ऊपर लगने से पहले ही पकड़ लिया। और अमन अपने फोन में देखते हुए बोला, और कुछ कोशिश करनी है तो कर लो, वरना अगर मैं अपने आप पर आ गया तो मैं तुम्हें सीधा पाताल लोक भेज दूंगा। मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा, अगर तीन तक गिनने से पहले तुम सामने नहीं आए, तुम जो कोई भी हो, तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अमन ने उस साये को चेतावनी दी थी, और अमन को एक और खास बात ये महसूस हो रही थी, क्योंकि जब वो गाड़ी में तारा के साथ था तब उसकी गाड़ी का शीशा अचानक से टूट गया था, तब भी अमन को किसी के वहां होने का एहसास हुआ था। ये भी बिल्कुल वैसा ही एहसास था। अमन समझ गया था कि जरूर कोई ना कोई ऐसा था जो तारा और मुझे साथ नहीं देखना चाहता था, लेकिन आज तो तारा भी मेरे साथ नहीं है, तो फिर इस तरह से मुझे छेड़ने का क्या मतलब हो सकता है। अमन ने कहा, तुम जो कोई भी हो, अगर तीन गिनने से पहले मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। अब उस साये की जान आफत में थी। अमन सिंह राठौड़ के गुस्से का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। सो अमन ने जैसे ही वन के बाद टू बोला, तभी वहां एक बड़ी ही खूबसूरत आवाज गूंजने लगी। नहीं नहीं जहां पना, नहीं नहीं, कुछ मत करना इस नाचीज को, मैं तो एक अबला हूँ, भूखी हूँ। ये सब बातें सुनकर अमन और तप गया और बोला, तू जो कोई भी है सामने आ, वरना अमन सिंह राठौड़ के कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही अमन ने ये कहा, तभी उस तहखाने की लाइट आ गई और अमन अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया था।
तभी अमन कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी एक काला सा धुआं वहां फैलने लगा था। अमन बड़े ही ध्यान से उस धुएं को देख रहा था, जिसमें से एक डार्क रेड कलर की शॉर्ट स्लीवलेस ड्रेस पहने एक कमाल की खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसके होंठ एकदम लाल सुर्ख थे। अगर कोई आम इंसान एक बार उसे देख लेता तो जरूर अपने होश खो बैठता, लेकिन अमन उसे बड़े ही सामान्य तरीके से देख रहा था। वहीं दूसरी ओर तारा परी बड़ी ही निष्ठा के साथ अपने ध्यान में मग्न थी। दो दिन पूरे होने को आए थे, लेकिन अभी तक कुल देवता नहीं आए थे। सोनल परी उसी बरगद के पेड़ में अंतर्ध्यान हो गई थी, और बीच बीच में वो पेड़ से बाहर निकलकर तारा परी को देखने आ जाती थी। और जब रात के दो पहर बीतने के बाद सोनल परी उस पेड़ से बाहर आई, तब उसने देखा कि बगीचे का माली उसी ओर आ रहा था। सोनल परी ने तारा परी के चारों ओर वो अदृश्य जाल तो बना ही रखा था, जिसकी वजह से तारा परी को कोई भी नहीं देख सकता था। माली काका के इस वक्त आने देखकर सोनल परी हैरान रह गई थी कि भला इतनी रात को माली काका यहाँ क्या करने आए थे। सोनल परी देखना चाहती थी कि आखिर इतनी रात को, जब सभी इंसान चैन की नींद सोए हुए थे, तब वो बूढ़ा इंसान यहाँ क्या करने आया था। सोनल परी का पूरा ध्यान माली काका के ऊपर था। उसने देखा माली काका के हाथ में एक जग पानी था। वो उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर एक जगह बैठ गए थे और वहां बैठकर रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने जग से भरा पानी बरगद के पेड़ पर, जो मोटा सा उसका तना था, उस पर डाल दिया। और सोनल परी ये देखकर हैरान हो गई कि जैसे ही माली काका ने वो पानी वहां डाला, तभी अचानक से कुछ बुलबुले और सफ़ेद धुआं सा वहां से निकले और सारा पानी पल भर में ही सूख गया। सोनल परी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि इस पानी का राज तो वो पता करके ही रहेगी, लेकिन उससे पहले तारा परी का ध्यान पूरा होना जरूरी था। अभी सोनल परी ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे वहां रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। सोनल परी ने अपने आसपास सारी जगह देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। और जब सोनल परी ने ध्यान से सुना तो उसे जल्दी ही एहसास हो गया था कि ये आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि उसी जगह से आ रही थी जहां माली काका ने पानी डाला था।